بسم الله الرحمن الرحيم الحمد شفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين مل کے دعائیں سرکار امام زمانہ اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا استجب لكم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد جی جو شب داریاں جن میں الحمدللہ آپ شرکت فرما رہے ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے یہ راتیں بڑی افضل ہیں، رمضان کی راتیں عام راتوں جیسی نہیں ہیں، خصوصاً یہ آخری 10 راتیں. حدیث پاک میں ہے کہ آخری 10 راتوں میں سے ایک ایک رات میں کروڑہا لوگ جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں. اب جاب ہے، مجبوری ہے، دوسری بات، دوسرے دن چھٹی ہے، تو ہم یہ فائدہ کیوں نہ لیں کہ یہ رات عبادت میں گزرے. اور دوسری جو اصل بات ہے کہ ہمارے مذہب میں جتنا خزانہ اہل بیت کی دعاؤں کا ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ہے. چیلنج آرام سے دے سکتے ہیں آپ، دنیا کے سارے مذاہب کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، کرسچنی، جڈائزم، ہندوازم، سکھزم، بدھزم، ہاں جتنے مذاہب دیگر ہیں، کسی کے پاس ایسی دعائیں نہیں ہیں. خزانہ ہے اہل بیت کا خزانہ، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم شیعہ بھی اس خزانے سے بے خبر ہیں. خزانہ ہے شاید، ادھر جتنے مومنین بیٹھے ہیں ان کو دو صحیفیوں کا پتہ ہے، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ علویہ، بس. اور گھروں میں بھی دو ملیں گے، ہر معصوم کا صحیفہ ہے. الحمدللہ چھپ چکا ہے، بازار میں آ چکا ہے، صحیفہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بی بی فاطمہ زہرا کے دعاؤں کا مجموعہ، صحیفہ امام حسن مجتبیٰ، امام حسن کی دعائیں، صحیفہ امام محمد باقر، امام باقر کی دعاؤں کا، یہاں تک کہ صحیف امام مہدی آخر الزمان. دیکھیے اہل بیت کا علم اگر دیکھنا ہے تو ان دعاؤں میں دیکھیے. وہ کیوں؟ جب اہل بیت عوام سے بات کر رہے ہیں تو ان کی جو عقلوں کی سطح ہے اس پہ نیچے آسان کر کے بات کرتے ہیں. خود ہمیں حکم دیتے ہیں کہ مجمع کو دیکھ کے بات کریں، حدیث ہے، اگر کسانوں کا مجمع ہے آپ فلسفی کی بات کر رہے ہیں وہ کیا سمجھیں گے بیچارے، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کی سطح پہ بات کریں. لہذا اہل بیت جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آسان کر کے بتاتے ہیں، تو ان کا علم کہاں دیکھیں؟ جب وہ خدا سے بات کرتے ہیں. صلوات پر دے محمد. اصل علم اہل بیت تو ان دعاؤں میں ہے. ہاں اور پھر یہ دعائیں کیا ہیں؟ یہ اہل بیت کا زندہ معجزہ ہے. آپ کہتے ہیں مولا علی نے یہ معجزہ کیا، امام حسن نے یہ معجزہ کیا، امام حسین نے یہ معجزہ کیا، ایک منکر مانتا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں اب دکھاؤ کیا، اب دکھاؤ اپنے امام کا معجزہ. اب کیا دکھائیں گے معجزہ؟ اب یہی دعائیں ہیں جو معجزہ ہیں. لا علاج مریض کو ان دعاؤں سے شفا ملتی ہے. ہم وہ استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ ویسٹ میں یا میڈیا آزاد ہے، یہاں کرنے کا کام ہے، یہاں پہ میڈیا آزاد ہے آپ کی. دیکھیے انشاءاللہ اللہ پاک سب آپ کو امام علی رضا کی زیارت نصیب کرے. آدھی رات اور آج کی رات دعا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ. جو نہیں گئے وہ جائیں اور جو گئے ہیں دوبارہ جائیں. अगर रमज़ान में वहाँ जाना हो, रमज़ान में आपको खलवत मिलेगी, वरना इमाम रज़ा के ज़रिए को हाथ लगाना भी मुश्किल है। सिर्फ रमज़ान में खलवत होती है, कि ईरानी रमज़ान में सफ़र नहीं करते तो खलवत होती है। इमाम रज़ा के यहाँ खलवत सिर्फ रमज़ान में होती है, वरना आप हाथ लगाना मुश्किल है। अगर रमज़ान में मौका हो तो ज़ाहिर है कि तेहरान में तो आप जाएंगे एयरपोर्ट, तेहरान में एक दुआ का जलसा मिस न कीजिएगा कभी, वो ज़िंदगी भर याद रख यादगार दुआ होगी। तेहरान में बिल्कुल सेंटर है बस का, सबसे जैसे कराची में रीगल है उस तरह से तूपखाना कहते हैं, मरकज़ है वहाँ, सारी मिनिस्ट्रीज है वहाँ। एक मस्जिद अर्क है, मशहूर है। वहाँ एक जाकिर है जो 2 बजे रात को ये दुआ अभी हमजा सुमाली शुरू करता है और 4 बजे ख़त्म हो जाती है, 2 घंटे। और जो कम से कम मजमा होता है, यानी छुट्टी का दिन नहीं है, वो 40,000 का होता है, पूरे रोड ब्लॉक होते हैं। और वो 2 घंटे में क्या करता है आप हैरान हो जाएंगे। पूरे अस्पताल के मरीज वहां आते हैं इस दुआ के सदके में शिफा पाते। इन दुआओं के जरिए से आप मिलियंस को मुसलमान बना सकते हैं, हम फायदा ही नहीं ले रहे। इन दुआओं के जरिए से आप कैंसर का मरीज भी ले आए, डॉक्टर्स को भी ले आए, पहले भी चेकअप करें, दुआ में आए, उसके बाद भी देखें कि कैंसर सेल बच गए हैं या ख़त्म हो गए, तो कौन नहीं मानेगा। ये दुआएं बंद पड़ी हुई हमारे यहाँ, बंद बंद, कुछ फ़ायदा हम नहीं देते। ये जिंदा मौजज़ा है, जिंदा मौजज़ा है। देखिए लंदन में 2005 में हमने एक अशरे में कहा कि ये हमने कराची में तजुर्बा किया था कि भाई ये जो अब आंसू बहाते हैं ना, इनमें भी बड़ी शिफा अल्लाह ने रखी है। जो इमाम हुसैन के आंसू हैं, इनमें बड़ी शिफा। हम टिशू में साफ करके फेंक देते हैं, उलमा बुजुर्ग इन आंसुओं के लिए ख़ास रुमाल रखते हैं, मुज्तहिद हैं आयतुल्ला मराशी नजफी। अरे ऐसे मुज्तहिद नहीं है, 3 मरतबा इमाम ज़माना की ज़ियारत की है। और ज़िंदगी में नहीं बताया, कहा हर बारदार मेरी ज़िंदगी में हराम है, किसी को नहीं बता। 3 मरतबा सरकार की ज़ियारत की। और ये वो मुझते थे सबसे ज़्यादा मदरसे कुम में इन्होंने बनाए, मगर ज़िंदगी में हज न कर सके, हज वाजिब भी नहीं था, सब्ज़ी की दुकान से ख़र्चा चलता था। और सबसे बड़ी ईरान में लाइब्रेरी इनकी है, सबसे ज़्यादा मदरसे इनके हैं। वसीयत करते हैं, बेटे जब मुझे दफन करो तो ये रुमाल न भूलना, ये मेरे कफन में रखना, क्योंकि इसमें मैं जब भी रोता था हुसैन के गम में, ये मैं आंसू जमा करता था, ये मेरे कब्र का सरमाया है। एक मुज्तहिद कह रहा है, और फरमाया बेटे मुझे कब्र में लिटा के एक जाकिर एक आलिम को जरूर बुलाना कि वो पहले हुसैन के मसाहिब पढ़े, फिर मेरी कब्र को बंद करना। फिर मेरी कब्र को बंद कर। तो ये जो आंसू बहते हैं इनमें अल्लाह ने शिफा रखी है। मैंने ये वहीं इस्लामिक सेंटर में कहा था कराची में, मैंने कहा आप आजमा के देखें इन आंसू को, जहां दर्द हो जहां तकलीफ हो वहां लगाए। तो दूसरे दिन ही एक मोमिन ने आके मुझे बताया कि मौलाना मुझे कई सालों से घुटनों में दर्द था और इलाज कोई नहीं था इसका, आपने कहा मैंने रोके वही आंसू घुटने में लगा है, अब ऐसे लगता है कभी गुंडे में दर्द ही नहीं हुआ। मीडिया का ज़माना है। इस दुआ का मकसद ये है कि मरीजों को ले आएं, मीडिया को ले आएं, डॉक्टर्स को ले आएं और फिर देखें कि कैसे शिफा मिलती है। हाँ, कोई फ़ायदा हम नहीं लेते इन दुआओं का। मैंने लंदन में यही बात बताई तो वहाँ एक मोमिना थी, उसके यहाँ कोई कैंसर था गले में या क्या था, और उसका कोई इलाज दुनिया में नहीं था। वहीं लंदन में भी लाइलाज थी। क्या बोला ना, जैसे आपने बताया तो मैंने सारे आंसू अपने भी दूसरों के भी लेके मैंने लगाए। क्या दूसरे दिन अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। तो ये मंसूर अर्जी जाकिर है, ये 2 बजे दुआ शुरू करता है, 4 बजे 2 घंटे, उसमें मातम होता है, मजलिस होती है, गिरिया होता है, दुआ होती है। आप हैरान हो जाएंगे क्या है? और मजमा रोड पूरे फुल होते, मस्जिद तो इतनी बड़ी नहीं है, मस्जिद भी बड़ी है लेकिन इतना मजमा 40,000 पूरा रोडों पर होता। तो हमारे यहाँ अभी तक दुआ का कल्चर डेवलप नहीं हुआ है, ये डेवलप करना है। वो रमज़ान में ही डेवलप कर सकते हैं। तो 8 रातें, आप 8 रातें शब्बेदारी के, हमारे बच्चों को पता तो चले ना दुआएं हैं क्या। और सिर्फ बच्चों को नहीं, यूएस को भी बताएं कि इससे कैसे शिफा मिलती है। आप देखिए हमारा ख़जाना है। एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि न्यूयॉर्क में, बहुत पुरानी बात है, 20 साल पहले, उन्हें बताया गया कि एक अमरीकन ऐसी दुआएं पढ़ता है कि लोग जवान उसके आशिक हो गए, मुरीद हो गए, हजारों जवान जमा करता है, दुआ पढ़ते हैं, रूहानी लज्जत हासिल करते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा अमरीका में फिर दुआ फिर लज्जत, ये कौन है? मैं देखना चाहता। लोग मुझे देख के वाकई, मैंने देखा हजारों का मजमा था और वो दुआ, सबके हाथ में दुआ थी इंग्लिश में, वो बड़ी आवाज़ भी अच्छी थी, दुआ पढ़ रहा था और लोग लज्जत हासिल कर। मैंने भी वो किताब देखी। अब डॉक्टर ने कहा, मैंने पहला सफ़ा देखा, दूसरा सफ़ा देखा इंग्लिश में, मैंने देखा ये सारी जो दुआएं इसने इमाम ज़ैनुल आबदीन की अपने नाम से छाप दी हैं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हमारे खजाने से हम बेखबर, और उसने हजार मुरीद भी बना लिए कि मेरी दुआएं। देखिए बिल्कुल दुआओं को हमने फरामोश कर दिया है, और ये महीना दुआओं का है। और दूसरी बात यह है कि ये जो शिया काफिर हमारे खिलाफ प्रोपेगंडा हो रहा है, इसको आप दुआओं के जरिए से ख़त्म कर सकते हैं। 2 मिनट का काम है। एक मोमिन ने बताया कि एक वहाबी था, अरब था, उसने कहा शिया काफिर है। मैंने कहा देखो शिया को काफिर मत कहो, पहले समझो कि शिया कौन है। मैं तुम्हें एक दुआ भेजता हूँ जो शिया, सारे शिया रमज़ान में पढ़ते हैं, दुआए अभी हमजा, जब भी हम पढ़ने वाले पूरे ईरान में पढ़ते हैं, वहाँ वहाँ रेडियो पर आप देखें, फिर आप फैसला करें कि शिया क्या वाकई काफिर है। उनको ईमेल कर दी, तर्जमे की ज़रूरत नहीं थी, अरब थे, कि ये दुआ शिया पढ़ते हैं, ये शियों का अकीदा है। यकीन जानिए मोमिन ने कहा, वो जो सख्त शियों का दुश्मन था, मुझसे माजरत की कि मुझे माफ़ करो कि मैं शियों के बारे में गलत सोचता था, अगर ये दुआ पढ़ने वाला काफिर है तो फिर दुनिया में कोई मुसलमान नहीं है। चीज़ों देख रहे हैं आप कि हम इन दुआओं को न अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं न दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तर्जुमा तक नहीं है, सिर्फ सहीफ़ सज्जादिया, सहीफ़ अलविया का तर्जुमा, किसी सहीफ़ सहीफ़ फातिमा ज़हरा का तर्जुमा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में, किसी सहीफ़े का तर्जुमा करने की करोड़ों शियों को अभी तक तौफीक नहीं हुई, ना उर्दू में ना इंग्लिश में, सिर्फ फारसी में हुआ है। इसके एप्स बना दें, सदके जारिया भी नियत कर लें, 3,000 का खर्चा होगा, 4,000 का तर्जमा भी हो जाएगा, दुनिया के हर मोबाइल में आ जाएगा, हमने टीम बनाई है कुम में, तर्जुमा भी करते हैं, एप्स बना देते हैं, जैसे भी हमारी किताब भी इसमें एक आ गई है, रूट्स ऑफ टेररिज्म। तो ये ऐप्स बना दें, ऐप्स बनाने का फ़ायदा क्या? वो जो वहाबी है, जो तकफीरी है, उसके जेब में भी ये चली जाएगी। आसानी से कह सकते हैं कि जाके देख लो उसकी जेब में भी। पहले किताब छपाते थे इसी में, 2-3 हज़ार में 1,000 किताबें छपती थी, वो भी महदूद। अब मिलियंस में आप ऐप्स, यानी मिलियंस में आप जो है ना स्प्रेड कर सकते हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद ज़रूर ज़रूर। मसलन 12 मोमिन उठ जाए कि भाई मैं सहीफ़ इमाम हुसैन चपंग आ रहा है मुहर्रम का महीना, मैं सहीफ़ इमाम बाकिर को स्पॉन्सर करता हूँ, कोई मुश्किल काम? कितनी तबलीग हो जाएगी। असलन मोजज़ा जिंदा यही दुआएं। और दूसरी दलील क्या है? आप देखिए भाई, हर एक को हक है कहे कि मेरा इमाम सबसे बड़ा है। रोक तो नहीं सकते ना आप, दीन में ज़बरदस्ती तो नहीं कहे कि मेरा इमाम बड़ा है, मेरा खलीफा बड़ा है, मेरा फलां बड़ा। ठीक है, तुम कह रहे हो फलां बड़ा है, ठीक है, हम नहीं कहते वो छोटा है। लेकिन भाई, जो तुम्हारा इमाम बड़ा है, तुम्हारा खलीफा बड़ा है, तो उसने कोई 50 सफ़े की कोई किताब भी लिखी है, नहीं लिखी है? कैसे मैं पता चले कि ये बड़ा है? अगर तुम कहते हो हमारा फला लीडर बड़ा है, तो उसकी कोई 100 सफ़े की किताब दिखा दो, उसकी कोई दुआ दिखा दो। न उसने कोई किताब लिखी है, न उसकी कोई दुआ है, तुम कह रहे हो वो सबसे बड़ा है। हम जिसे सबसे बड़ा कहते हैं, उसकी नहजुल बलागा भी मौजूद है, सहीफ़ अलविया भी मौजूद है। असर से मुअस्सर का पता चलता है ना, असर से मुअस्सर का पता चलता है। सूरज निकलता है, सूरज हम नहीं देखते, रोशनी देखी में सूरज निकला है। आप कहते हैं वो बड़ा है, ठीक है भाई बड़ा है, तो उसका कोई असर तो दिखा दो। जिसकी 50 सफ़े की किताब नहीं, वो आप कह रहे हैं सबसे बड़ा है। हम जिसे बड़ा कहते हैं, तो उसका असर मौजूद है। तो हमारे सारे इमामों का असर मौजूद है। सलवात पढ़ी मोहम्मद। अज़ीज़ाने किराम, लिहाजा ज़रूरत है कि इन रातों में हम इन दुआओं को रोशनास कराएं, न सिर्फ मुसलमान, गैरों को भी रोशनास कराएं। देखिए, ऐसी दुआएं हैं मुजर्रब है, मुजर्रब आजमाई, ला इलाज मरीजों पे पढ़ने ठीक हो जाते। बस उनमें से एक दुआ जो हमने भी तजुर्बा की, और जब भी मैंने किसी मजलिस में बताया तो 2-3 मोमिन निकल आए, बोला ना हमने भी आजमाई है ये दुआ, बिल्कुल मुजर्रब। वो कौन सी दुआ है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, की दुआ है मकातिल इब्ने सुलेमान। ये सहाबी है मकातिल। ये कहते हैं जो भी प्रॉब्लम हो आपको, ला इलाज बीमार हो, कैंसर हो, जो भी हो, ये दुआ पढ़ो, 100 मरतबा पढ़ो। अगर दुआ कबूल ना हो, सहाबी कहता फिर मुझ पे लानत करो, गारंटी है, गारंटी, जमानत दे रहे, अगर दुआ कबूल ना हो मुझ पे लानत करो, इतनी गारंटी है सहाबी को। अजीज आने के लिए वाकई ऐसा है, कई 100 लोग अभी तक मुझे मिले, कहते हमने इस दुआ को आजमाया है, नामुमकिन मुमकिन हो गया, ला इलाज मरीज को शिफा मिल गया। अजीब है, दुआ भी मुख्तसर। मैं अपना वाकया बताऊं, तकरीबन 22 साल हो गए, पहले मैं लॉस एंजलिस में था, रमजान का महीना था, मेरे वालिद गिरामी पर अटैक हुआ, और ये तकरीबन 4th अटैक था, नहीं चौथे तीसरे में ही लोग मुश्किल से बचते, 4th अटैक था। और वहाँ के डॉक्टरों से, यहाँ डॉक्टर हमारे गज़नफर दोस्त हैं न्यू जर्सी में, हार्ट स्पेशलिस्ट, उन्होंने राबता किया, तो वाले साहब का ब्लड प्रेशर जो है वो इतना गिर गया था, ऊपर वाला शायद 40 था और नीचे, ये नीचे वाला भी इस तरह 40 और 50 यही चल रहा। तो उन्होंने, डॉक्टर ने बात की वहाँ के डॉक्टरों से, कहा कि मौलाना बचने की कोई चांस नहीं है, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है वहाँ के डॉक्टर से, तो आप जितना जल्द हो सके आप टिकट लेके चले जाए। अभी रमज़ान का महीना था, सिलसिला मजालिस का भी चल रहा था, हमने कहा अगर हम जाएं भी, जो ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो तो चंद घंटों में या एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे, तो भी हम यहाँ से जाएं, अभी लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से लंदन, लंदन से कराची, कराची से भी हमारा शहर आगे था सेवन शरीफ के करीब, बीच में तो 2-3 दिन हमें लग जाएंगे। हमने कहा एक ही चीज़ है, वो है दुआ, जो इस वक्त सहारा बने। जाहिर के वालिद थे परदेश में थे, हम बस एक कोने में चले गए और अपने खलूस के साथ दुआ की, परवरदिगार हम परदेश में वालिद साहब इस तकलीफ, ये दुआ 100 मरतबा पढ़ने में अगर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, लज्जत से पढ़ें, गिरिए के साथ, तो 1.5-2 घंटा लग जाते। हमने दुआ पढ़ी और जनाब दुआ ख़त्म हुई तो वहाँ से फ़ोन कॉल आ गया, वहाँ के हमारे रिश्तेदार ही डॉक्टर थे, उन्होंने कहा जी मौजज़ा हो गया, मौजज़ा हो गया, क्या हो गया जी? अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया, हम खुद भी हैरान हैं, और उसके बाद हमारे वालिद साहब 10 साल ज़िंदा रहे थे सलामत पड़े मोहम्मद वाले। तो ये ज़ाती तजुर्बा है, ऐसे हज़ारों लोगों ने तजुर्बा किया। तो ये दुआ का मकसद ये है कि ये मीडिया पर आए, ठीक है ना। अब देखिए हज़ारों लोग शिफा पाते हैं मशहद मुकद्दस में लाइलाज में, हत्ता कि हमने वहाँ देखा कि ईसाई आते हैं शिफा लेने के लिए। एक स्विट्ज़रलैंड से ईसाई था, अपने बेटा उसका कैंसर था, वो आ गया, उसे किसी बताया कि भाई शिफा मिलती है यहाँ, इसी दर से मिलती है। तो यहाँ आप वेस्ट में बैठे, अगर ये दुआ, पहले तो दुआ का माहौल बने, हाँ जी दुआ का माहौल बने, दुआ का फरहंग बने, कल्चर बने, हम पहले ख़ुद इमाम की दुआएं समझें और पहले हम शिफा लें, जब हमें यकीन हो जाए तो हम ईसाई को भी ले आएंगे, यहूदी को भी ले आएंगे, हिंदू को भी ले आएंगे, आ जाओ हमारे इमाम की दुआ में, देखो तुम्हें शिफा मिलती है तो मोमिन हो जाना। अब देखिए वहाँ पर इंग्लैंड में टीवी का फ़ायदा है, टीवी आप क्या है, कोई भी टीवी अपना नहीं है, टीवी से बड़ी तो हज़ारों लोग शिया हो गए, मीडिया का बड़ा फ़ायदा। अब मीडिया पे एक हमारी मोमिना थी, एक हिंदू औरत का फ़ोन कॉल आ गया, रो रही थी बेचारी, कह रही थी मैं मुसलमान हो गई, मुसलमान से शादी कर ली, मुसलमान जब हो गई तो मेरा पूरा ख़ानदान मेरे खिलाफ़, बाप ख़ानदान सब ने मुझसे सोशल बायकॉट कर लिया, अब मुझे औलाद नहीं हो रही है, और जिस मर्द के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा वो कह रहा मैं तुझे छोड़ दूंगा अगर तुझे औलाद नहीं हो रही, मैं क्या करूं। अब वो सुन्नी मुसलमान हो गई थी। इस हमारी मोमिना ने जो प्रोग्राम कर रही थी कि देखो हमारे इमाम की दुआ है तुम्हें बेटा 100% होगा, मगर आन एयर आवाज़ जा रही है, तू वादा कर कि अगर मैं दुआ बताऊँ और तू पढ़े और तुझे औलाद हो तो फिर तुझे शिया बनना पड़ेगा सलवात पड़ी मोहम्मद वाले। उसने कहा क्यों नहीं बनूंगी, जब इतना मौजा हो जाए, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया। उस हमारी मोमिना खातून उसको बताया और अल्हम्दुलिल्लाह उसे औलाद भी हो गई और शिया भी हो गई। तो हम इन दुआओं से फायदा क्यों नहीं लेते, इन दुआओं को हमने इमाम बारगाहों में बंद नहीं करना है, इनको मीडिया पे ले जाकर आम करना है, और डॉक्टर भी आए मरीज भी आए। हाँ पहले प्रैक्टिस हम खुद कर लेना तो फिर हम मीडिया पे जाके चैलेंज कर सकते हैं, जब आपको यकीन होगा तो चैलेंज करेंगे ना। अजीज़ान करीम दुआ के आदाब हैं, दुआ के तरीके, इतना ख़जाना है हम इससे कोई फ़ायदा ही नहीं लेते हैं। सलवात पड़ी मोहम्मद, अजीज़ान करीम ये मजलिसें इसलिए कि इन दुआओं के ख़जाने से खुद भी फैज लें, इस सोसाइटी को जो मादा परस सोसाइटी है उनको भी जिंदा करने का जरिया ये दुआएं हैं, ये जिंदा मौजदा है। और दूसरा इन शब्बेदारियों का मकसद जो हमारे जहन में है कि देखिए लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, एक रात 70 साल की इबादत के बराबर सवाब है। एक रात आप जागें 70 साल का सवाब, इंतहा है सवाब की इंतहा है। और फिर पैगंबर खुदा हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु की हदीस मुबारक है कि अत्तफक्कुर सौअतिन खैरुम मिन इबादत सबईन सना, 1 घंटा फिक्र करना 70 साल की इबादत से अफजल। अब 19, 21, 23 के अहमाल इतने ज्यादा हैं कि हमको 5 मिनट फिक्र करने का टाइम नहीं मिलता, तो ये इबादत तो रह ही जाएगी। हाँ जी, कि इस महीने में ये भी तो इबादत है ना, 70 साल के बराबर इबादत है 1 घंटा फिक्र करना। किसके बारे में फिक्र करना? कि आज हमारे शिया कितने मजलूम हैं, हर जगह शिया मारे जा रहे हैं, कैसे हम उनकी मदद करें, कैसे ये टेररिज्म खत्म करें। टेररिज्म का निशाना सबसे ज्यादा हम बन रहे हैं। पाकिस्तान में देखिए, इराक में देखिए शिया मर रहे हैं, शाम में देखिए शिया मर रहे हैं, लबनान में देखिए शिया शहीद हो रहे हैं, अफगानिस्तान में शिया, जो हमने कैलकुलेट किया है तकरीबन महीने में 5,000 शिया मारे जा रहे हैं, यानी 60,000। ये जेनोसाइड है। हम यहाँ आराम से बैठे हैं, फिक्र न करें। रसूल खुदा फरमाते मन असबह वलम यतिम बि उमूर المسلمین فلیس بمسلم, अगर आपका पूरा दिन गुजर जाए सिर्फ अपने पेट की फिक्र, सिर्फ अपने बच्चों की, और दूसरे लोग मर रहे हैं, शाम में मर रहे हैं, कट रहे हैं, गले कट रहे हैं, किसी और मुसलमान मोमिन की फिक्र नहीं, तो रसूल खुदा कहते हैं फिर खुद को मुसलमान मत कहो। मुसलमान नहीं हो तो भाई, अगर पाँव में कांटा लगे तो आंख में आंसू क्यों आता है? कि पाँव जिस्म का हिस्सा है, वो हमारा भाई है। हाँ, जो अलीन वलीउल्लाह कहता है वो हमारा भाई है। रसूल खुदा फरमाते अना व अली अब व हाज़िल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के रूहानी बाप हैं। जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, अली वलीउल्लाह कहा, यानी बाप कौन है? रूहानी प्यारे पाक नबी। और मौला अली हम कौन है? हम भाई हैं। और सारी दुनिया की शैतानी ताकतें मिटाने पे लगी हुई हैं, और सबसे आगे आगे सऊदी है, और कई और ममालिक, ये जितने भी वहाबी स्टेट्स हैं, हमारी तादाद कम है, हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं? ये फिक्र करें। मुमकिन है कि एक इंसान मोमिन मोमिना फिक्र करें, इसका सॉल्यूशन निकल आए। नामुमकिन है कि सॉल्यूशन ना हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। हमें सोचना चाहिए, और इस महीने में सोचना भी इबादत है। 70 साल की इबादत भी होगी, सवाब भी होगा। देखिए तारीख उठा कर देखें, हिस्ट्री उठा के देखें, जो माइनॉरिटीज में होते हैं, अकलियत में होते हैं, और उन्हें अगर कोई मिटाना चाहे तो सिर्फ 3 रास्ते हैं उनके पास बचने के। आज पूरे शैतान हमें मिटाना चाहते हैं, और ये यहां पर भी हुआ है। पुरानी तारीख उठा के देख लें। देखिए यहूदी कई सालों से कोशिश कर रहे थे हमें हुकूमत को यूरोप में बनने नहीं दी ईसाइयों ने, क्योंकि वो अकलियत में थे, वो अक्सरियत में थे। रूस में एक छोटी हुकूमत चंगेज खान के जमाने में बनी, चंगेज खान को इन्होंने बुलाया भी था, मगर वो फिर ईसाई अक्सरियत में थे, उन्होंने ख़त्म कर दी। ठीक, और लड़ाइयाँ होती रहती थी। आप 100 साल पहले आप देख लें हिस्ट्री यूरोप की, इनको मारते थे। यानी सलन किसी को जू कहें तो उसे गुस्सा होता है, किसी को कंजूस कहें तो इस तरह से, नो जू नो डॉग, ये 60 साल पहले यहाँ भी था। उन्होंने कैसे अपने पूरी मिल्लत को बचा लिया। तीन चीज़ों पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया। एक एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज में जितने भी जाएं प्रोफेसर आपको जूस मिलेंगे। दूसरा मीडिया, तीसरा बिजनेस। बेन ही ये कुरानी नुस्खा है। कुरान ने कहा, पैगंबर ने कहा, उतलबुल इल्म मिनल महद इला लहद। इल्म हासिल कर गहवारे से लेकर कब्र तक। अगर इस फसूल पे, इस उसूल पे हम अमल करते, सारे यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर शिया होते। हमने नहीं किया। आज नहजुल बलागा पढ़ाने वाला यहूदी है। बताइए, शर्म की बात है ना? शिया नहीं है उस्ताद, प्रोफेसर यहूदी नहजुल बलागा पढ़ा रहा है। उसूल फिक है शिया, पढ़ाने वाला यूनिवर्सिटी में यहूदी है। ये कितनी बड़ी गफलत है हमारी कि एजुकेशन को हम बिल्कुल भूल गए। दूसरे लोग हमारा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो वो क्या पढ़ाएंगे? क्या सही पढ़ाएंगे, दुरुस्त पढ़ाएंगे? अजीज आने की राम, ये शहरग हयात है तीन चीज़ें किसी कौम के लिए, मीडिया और एजुकेशन और बिजनेस। जब तक कि हम इसमें कभी नहीं होते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। नौकरी वाला एंट माउथ रहता है, क्या करेगा? उसे नौकरी का भरोसा भी नहीं कि आज उसे निकाल दिया जाए। इसीलिए मुस्तहब है कि बिजनेस करो, बिजनेस करो। 90% रिज्क अल्लाह ने बिजनेस में रखा है, और ये सवाब भी है, ये मुस्तहब भी है। देखिए, आपने 30 साल बिजनेस किया, तो अब जब आपका बेटा शुरू करेगा, वो 31st और आगे बढ़ेगा। 30 साल का आपका तजुर्बा उससे मिल गया, अब वो 31 साल और आगे बढ़ेगा। अगर 60 साल आपने किया, वो 61 साल में होगा। लेकिन नौकरी आपने की, तो बच्चा भी नौकर बनेगा, जीरो से शुरू करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, खोजा कम्युनिटी हमारी बिजनेसमैन है, तो कितना बड़ा बिजनेसमैन सेंटर बनाया है, ये बिजनेस कम्युनिटी बना सकती है। तो अजीज आने गिरामी, लाजमी है। इस वक्त जो रिपोर्ट है अकवाम मुत्तहिदा की, कि दुनिया में सबसे ज्यादा यतीम शिया बच्चे, वो इराक में सबसे अक्सरियत जो ऑर्फेंस है, ये रिपोर्ट आप पढ़ लें जाके गूगल में, सबसे ज्यादा शिया बच्चे। बताइए, अगर हमारे पास पैसा होगा तो उनकी मदद करेंगे। हमारे महमूद जाफर यहाँ के दोस्त हैं, वो देखने गए थे नजफ के बाहर यतीमों का कैंप। कह रहे थे, मैं पूरा दिन रात खाना नहीं खा सका, रोता रहा। कितने यतीम बच्चे, क्योंकि इतनी गर्मी है, शेल्टर न होने की वजह से और सही फूड न होने की वजह से आँखों की बिनाई खो चुके। ये मसले वाकयात, और हर दिन यतीमों में इजाफा हो रहा है। कैसे मदद कर सकते हैं इनको, जब तक हमारे पास कोई बिजनेस प्लान ही नहीं है? हमें नेटवर्क बनाने की जरूरत है, एक मजबूत। देखिए, यहूदियों का नेटवर्क, आगा खानियों का नेटवर्क, बोहरा का नेटवर्क, अगर नेटवर्क नहीं है तो शियों का नहीं। हम फजूली चीजों पर लड़ते रहते, झगड़ते रहते, बहुत मामूली चीज, जो असल चीज है उस पर हम टाइम ही नहीं खर्च कर रहे, पैसा ही नहीं खर्च कर रहे। एक मजबूत नेटवर्क की जरूरत है अगर हमें जिंदा रहना है, आइंदी नस्ल को बचाना है, टेररिज्म को खत्म करना है। सबसे हर जो भी प्रोजेक्ट, उसमें पैसे की जरूरत है ना। बिजनेस कम्युनिटी अगर हमारा नेटवर्क बन जाए, हम इस टेररिज्म को रोक सकते हैं। अगर इस वक्त आप फर्ज करिए 20 रेडियो खोल दें, ये इलाका गैर से सारे टेररिस्ट आते हैं, अनपढ़ लोगों को, बच्चों को लेते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, इतनों को मार दो, इनको मार दो, इनको मार दो, जन्नत में जाओगे, हूरे मिलेंगी, अनपढ़ बच्चे होते हैं। अगर 20 रेडियो पश्तो जबान में आप खोल दें सरहद में, यकीन जानिए वहां का टेररिज्म रुक जाएगा। पैसा चाहिए इसके लिए। अगर 20 टेलीविजन आप खोल लें, जिस एरिया में भी टेररिज्म हो रहा है, वहां टेररिज्म खत्म हो जाएगा। मीडिया नहीं हमारे पास, जैसे अभी आपने सुना, सिर्फ एक दुआ गई तो वही शख्स जो शियों को काफिर कह रहा था, क्या कहा? कि अगर शिया काफिर है तो दुनिया में कोई मुसलमान नहीं है, क्योंकि उसे मैसेज मिल गया। और यही था, मैंने अर्ज किया कि इंग्लैंड में हमारे बच्चों को शिया, तुम शिया हो, तुम काफिर हो, ये 5 साल पहले की बात है, हमारे साथ मत बैठो, प्रॉब्लम हो गई थी यही तकफीरी ग्रुप के प्रोपेगंडा से। अब हमारे 3 TV आ गए हैं, अब आवाम तो हजारों शिया बनी, उनके उलमा भी शिया बन रहे।
सलवा।
आप देखिए कि जियाउल हक के ज़माने से करोड़ों भी नहीं अरब हा पम्फलेट आपके खिलाफ छपे हैं, शिया काफ़र शिया काफ़र शिया काफ़र। वो कहते हैं कि झूठ इतना बोलो कि सच का गुमान होगा, वही होंगे। मैं क्या पूछता हूँ शियों से, भाई आपने कुछ $100 खर्च किया है? यानी हक पर भी हम हैं, पैसा हम नहीं खर्च कर रहे, वो जो सुफियान के मानने वाले हैं वो करोड़ों पैसे खर्च कर रहे हैं। अफसोस की बात कि शिया सब झूठ, शिया अली को अल्लाह मानते, शिया नबी को नहीं मानते, शिया ये कहते, शिया अजवाज को गाली देते। कौन शिया अजवाज को गाली देता? अब फतवा भी आ गया सारे मुश्तदीन का, अजवाज को गाली देने वाला मुसलमान नहीं है। क्योंकि प्रोपेगंडा था, महाराजे को बताया गया, समझो। असहाब को, असहाब सिर्फ चंद लोग हैं जिन्होंने घर जलाया है बीबी का, उसके अलावा सब असहाब को मानते। इस वक्त जो असहाब के कब्र की तोहीन हुई, किसने जुलूस निकाले? शाम में जो कबर सहाबी की हजरत हजर की, जो ये तोहीन हुई, किसने जुलूस निकाले, किसने एहतजाज किया? शियों ने किया। तो अजीज आने के प्रोपेगंडा है झूठा, उसका हम जवाब नहीं देते, तो नतीजा कि झूठ सच होने लगता है। ये सब ब्रेन वाश लोग हैं जो शियों को कत्ल करने पर आमादा है। तो लाजिम है, वाजिब है कि हमारे पास टीवियां होने चाहिए, 20 टीवी हों, 20 रेडियो हों, ये खुद ब खुद टेररिज्म खत्म हो जाएगा। अब 20 टीवी, एक टीवी को चलाने के लिए महीने का $50,000 खर्चा है, कौन देगा? मैं फर्ज करी, बिजनेस कम्युनिटी दे सकती है। हमें बिजनेस नेटवर्क की जरूरत है ताकि इस लानत को, टेररिज्म की, हम दुनिया से खत्म करें। सलवात पड़े मोहम्मद वाले। अब दो मरतबा हम चीन भी गए, हांगकांग भी गए कि एक हमारा नेटवर्क हो, क्योंकि इस वक्त आपको पता है इस साल 2012 में 9 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट चाइना ने किया, अमेरिका ने 1 ट्रिलियन भी नहीं किया है, सारा बिजनेस वहाँ है। और जो भी आप माल बनाए 500% 1000% भी प्रॉफिट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नेटवर्क वहाँ पर मुख्तसर बन गया है। अब ज़रूरी है क्या पूरे दुनिया में इसमें नेटवर्क में सब मिल के कोशिश करें? बस है कि बिजनेसमैन शिया है वो कभी अपना बिजनेस सेकेंड एक शिया को नहीं देता, यहूदी यहूदी को देता है। अब बताइए इस्लाम पे कौन अमल कर रहा है, कुरान पे कौन अमल कर रहा है? वो कहता है नहीं, ये भी मेरे सामने आ जाएगा, ये भी अमीर बन जाएगा। पैसा ना दो, अपने मोमिन को बिजनेस सीक्रेट बताओ, तुम्हें 40 साल का तजुर्बा है, उसे दे दो। नहीं देता कोई शिया, हमने नहीं देखा। ये क्या है कि मजलिसों में ये ट्रेनिंग नहीं मिली है, ये ट्रेनिंग थे भाई, ये 1000 रकत नमाज से अफजल है। मैंने रिवायत भी सुनाई थी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, के जमाने में एक मोमिन था 70 ईयर्स का, बहुत बड़ा व्यापारी था, मस्जिद में आके इमाम ने कहा तुम क्यों काम छोड़ दिया, तुमने जब भी ये देखता हूं मस्जिद में। बोला अभी इतना कमा लिया, इतना पैसा, इतना बिजनेस, अब 10 साल जिंदा रहूं, 5 साल, अब मैंने कहा कि अल्लाह अल्लाह करूं, आखिरत के लिए कुछ करूं। तो इमाम का जवाब सुन के वो भी हैरान हो जाएगा, आप भी हैरान हो जाएंगे। इमाम ने कहा ये शैतान ने तुझे धोखा दिया। वो हैरान हो गया, मैं तो समझाऊँ अच्छा काम कर रहा हूँ। कहा जब तू बिजनेस करता था कितने लोगों को जॉब मिल रही थी तेरे बिजनेस से? 70 साल तुझे इतना तजुर्बा। कहा बोला कोई 150-200 आदमी काम पर लगे हुए थे। का ये जो पूरी रात तू नमाज भी पढ़ ले ना, वो जो 150 फैमिलीज तेरी वजह से रोजी पा रही थे, वो इस सारी इबादत से अफसर है। जाके काम कर, तेरे पास तजुर्बा है, अपना तजुर्बा दूसरे लोगों को दे, शेयर कर। हमारे ये है ही नहीं कि एक बिजनेसमैन है वो कहता है नहीं मैं सीक्रेट किसी को नहीं दूं। लिहाजा इस नेटवर्क में हमने यही बनाया कि आप बिजनेस सीक्रेट मुफ्त में ना दें, आप एक मोमिन को ट्रेन करें, आपके पास 20 साल का तजुर्बा है जिस बिजनेस में भी है, वो 10% प्रॉफिट आपको देगा, ठीक है ना, फ्री में नहीं है। और एक चेन बनेगी, अब आपको उसने बिजनेस भी दिया और साथ में भी रहे, ताकि गारंटी भी है, क्योंकि उसके पास तजुर्बा है, आप अकेले नुकसान भी कर सकते हैं। अब फिर आप जो है 14 और मोमिन को ट्रेनिंग दे, जब आप ट्रेंड हो जाए और आपको 10% से शेयर मिलेगा, तो नतीजा ये होगा कि हमारी पूरी कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी बन सकती है। सलवात पड़े मोहम्मद वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह एक मुल्क में ये तजुर्बा कामयाब हुआ और एक बिजनेस में 80% शियों का होल्ड हो गया। उस तजुर्बा यहां भी कर सकते हैं, बिल्कुल कामयाब रहा। कि चंद बिजनेसमैन ने अपने सीक्रेट देने शुरू कर दिए। जब तक कि हमारा नेटवर्क नहीं होगा तो हम इस टेररिज्म का मुकाबला नहीं कर सकते। अब इसी तरह से हमने यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम यहाँ बनाया, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। पहले यही प्रोग्राम हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिकली करके देखा, वो भी आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, यानी अगर हम मिल जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, तो नामुमकिन मुमकिन हो सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये हमने तजुर्बा एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया में किया, ठीक। वहाँ हमने कहा भी आप देखिए यहाँ पर घर लेते हैं ना, ये घर 5 लाख का लिया, आपने 4.5 लाख दे दिए, 50,000 नहीं दिए, जॉबलेस हो गए, तो बैंक आपसे घर ले लेगी, घर भी गया 4.5 लाख भी गए। आइए हम आपको एक स्कीम बताते हैं, इस्लामी सिस्टम है, हम उसे यूज नहीं कर रहे। ये लास्ट ईयर हमने फिक्र किया, इस तरह सब लोग फिक्र कर रहे हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में हमने कहा कैपिटलिज्म फेल हो गया, अब इस्लाम ही की बारी है। इस्लाम में यकीनन कुरान में सिस्टम है, मगर हमने समझा नहीं है। और मैंने गौर करना शुरू किया आए कर्जुल हसना पे। ये 10 दिन मजलिस में के लिए आते थे, 1 घंटे की ड्राइव थी, सोचता था कि इसी आयत में ही कोई जवाब है। फिर एक मर्तबा वो फ्लैश होती है, जब सोचेंगे ना तो फ्लैश अल्लाह की तरफ से होती है और वो आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। यानी फिक्र हम करते नहीं है ना, फिक्र करने से खुद ब खुद खुदा नेमत देता है। और मुझे वहीं फ्लैश हुई कि देखिए कर्जुल हसना को हम वन वे समझ रहे हैं कि कर्ज ले लो, पर जब वापस लेने आए तो हंसना शुरू करो। वन वे हो गया ना। मैंने कहा ये वन वे नहीं हो सकता है, ये टू वे होना चाहिए। और वही टू वे सोचते सोचते उसका सॉल्यूशन निकल आया, पूरा सिस्टम बन गया और हमने उसको अप्लाई भी किया। हम लोगों ने 70 एकड़ जमीन ली एडलेट में, ठीक है, होलसेल में। अब मोमिनीन से कहा कि भी आप 2,000 मीटर जमीन ले लें $20,000 में और आप जाके मालूम करें यही जमीन अगर आप लेने चाहेंगे, पहले तो 2,000 मीटर कोई काट के देगा नहीं तुम्हें, अगर दे भी दे तो उसकी कीमत होगी कम से कम 40,000। देख सकते हैं जाके आप गूगल पे। सब मोमिन का बिल्कुल, मैंने कहा हर मोमिन को $20,000 का फायदा मिल रहा है, इसलिए कि हम 130 बंदे बन गए मेंबर। हर मोमिन को $20,000। अब 20,000 को मल्टीपल करें 130 से तो $1,000,000 का फायदा अपनी कम्युनिटी को हो गया, वही पैसा जो आप पूरी उम्र बैंकों को देते हैं, सूदी निज़ाम, ये है कर्जुल हसना। अभी ये पहला मरहला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जमीन मोमिन ने ले ली 25,000 मीटर जमीन फ्री में, स्कूल, इमामबारगा, मस्जिद, कब्रिस्तान सब के लिए निकल में आ गई। मोमिन को $1,000,000 का फायदा हुआ। अब मैंने कहा दूसरा इसका फेज है, अब है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट्स की, सिटी काउंसिल की फीस होगी, तकरीबन आपका 30,000 से 40,000 खर्च हो जाएगा, हर सिटी के अलग अलग रेट्स हैं। तो मैंने कहा सर 20,000 आपने ये दिया, 30,000 दूसरा खर्चा हो गया, 50,000 आपका खर्चा हो गया, डेवलप हो गई, अभी वो सारे ड्रेनेज सिस्टम गैस वगैरह आ गए। अब अगर डेवलप ज़मीन हो गई, 500 मीटर आपकी ज़मीन है, आपके पास 4 प्लाट है, तो एक प्लाट पे उसकी जो वैल्यू हमने मार्केट देखी 180,000, आपने खर्च किया 50,000 और आपको मिला 1,30,000। एक मोमिन, हर मोमिन को $130,000 का फायदा हुआ। कितने मोमिन थे? 130। अब 130 को मल्टीपल करें $130,000 से तो $1,000,000,000 का फायदा कम्युनिटी को मिला। तो हम कितने नादान हैं, हम इसी सूदी निजाम में मर रहे हैं। सिर्फ चंद महीनों में, हाँ, या एक साल में $1,000,000,000 का फायदा कम्युनिटी को मिल गया। कम्युनिटी स्ट्रांग हुई ना। हमने कहा 2 प्लाट आप बेच दें, 2 रखें, एक मोमिन हम ले आएंगे मुफ्त में बना के देंगे आपको। इनके बोल में इनको पागल होगा कि हमें मुफ्त में बना के दें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मैंने कहा वही जो फ्लैश हमें हुई है उसका ये हिस्सा है, मोमिन बना के देगा। कैसे बना के देगा? मैंने कहा मैं जानता हूँ बहुत सारे मोमिनीन हैं गल्फ में जो बेचारे बिदून कहलाते हैं। बिदून क्यों? इनके पास कोई नेशनलिटी नहीं है, 30,000 के करीब हैं, ये सब शिया है, उनका जुर्म शिया है। ना उनके पास पासपोर्ट है, ना आइडेंटिटी कार्ड है। स्कूल में अरब लोग उनको स्कूल में पढ़ने भी नहीं देते। 30,000 शिया हैं बेचारे, हमसे रबते में हैं, पैसा है उनके पास, वो कहते हैं 1 मिलियन हम लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, हमें नेशनलिटी दिलवा दें, ऑस्ट्रेलिया की या कनाडा की। मैंने कहा मोमिन आएगा $1,00,000 खर्च करेगा, 2 घर बनाएगा। अब वो काउंट कैलकुलेट करेगा कि कितना मेरा खर्चा हुआ, आज रेंट कितना है, तो इतने साल वो मुफ्त में रहेगा, 1 घर आपको मुफ्त में बना के देगा, और 100 साल वो फ्री में रहेगा, वो भी घर आपका है, मगर आपको तो अपना घर फ्री में मिल गया, खतरा भी नहीं कि बैंक वापस ले, उसको फायदा हुआ कि वो 100 साल फ्री भी रहेगा, उसके पास पासपोर्ट भी आ गया। सलावत पढ़ी मोहम्मद इमाम। तो ये मैं मिसाल दे रहा हूं कि हम सब लोग मिलके सोचें तो 1,000 सॉल्यूशन निकल आएंगे। जब तक कि हमारा नेटवर्क ना हो मजबूत, हम दुश्मन को ख़त्म नहीं कर सकते। दुश्मन हमारे शैतान हैं, टेररिस्ट हैं, बेरहम हैं, न बच्चों पर रहम कर रहे हैं, न बड़ों पर, न बूढ़ों पर रह रहे हैं। तो अजीज़ान, इन रातों को इकट्ठे होने का मकसद ये है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईस्ट में भी यहाँ ज़मीन देखी है, वेस्ट में भी देखी है, बल्कि इंशाल्लाह सैटरडे को और यहाँ भी हम चाहेंगे डेमोन्स्ट्रेशन भी एक दिन कर दें। तो इंशाल्लाह इसमें जो अभी हम लोगों ने ज़मीन देखी है, तकरीबन उसकी वैल्यू जो है $15,000 हमने रखी है, उसमें 1,000 मीटर 2 प्लाट होंगे आपके लिए, $15,000 यानी ओरिजिनल उसकी अगर बाजू में देखें तो 30,000 है उसके अतराफ में, यानी बाय वन वन फ्री, क्योंकि हम होलसेल में ले रहे हैं। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हमारे पास 100 या 130 लोग हो जाएं तो ये ज़मीन जो यूनिवर्सिटी की है वो फ्री में निकल आएगी, तो हम एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर सकते हैं। और वही होगा कि हर मोमिन को 15,000 का फ़ायदा होगा कि वन बाय वन फ्री, क्योंकि वो वहाँ जो मार्केट हमने देखी नज़दीक तकरीबन 30-35 हज़ार की प्रॉपर्टी है, और दोनों ज़मीन हैं वो इसके नज़दीक भी है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट एक नहीं, हम कई 100 शुरू कर सकते हैं, ये तो हमें गाइड कर रहे हैं। दूसरी, जब आप सीख गए तो आप सब लोग इस तरह के प्रोजेक्ट चला सकते हैं, उसमें आपके वोट की पावर होगी। आज हमारे वोट की कोई पावर नहीं, 70,000 शिया हैं, आपका एक नुमाइंदा पार्लियामेंट में नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद। और अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे कभी कोई बनेगा भी नहीं, प्लानिंग होनी चाहिए। जब देखिए यहूदी एक साथ रहते हैं, एक कट्ठे रहते हैं, तो उनके वोट का एक वोट उनका ज़ाया नहीं होता है, उनके बंदे ज़्यादा होते हैं। लिहाजा ज़रूरी है इन मसाइल पे ये 1-2 रातें हम मिल बैठें और फिक्र करें। 1 घंटा फिक्र करना 70 साल की इबादत से अफजल है। देखिए ये टेररिज्म का खात्मा ये हमारे लिए असलन वाजिब है, क्यों टेररिज्म का शिकार हम और आप बन रहे हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। सलवात पढ़ी अजीज़ान के नाम। आइए सरकार इमाम ज़ैन अल-आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शुक्रिया कि नूरानी दुआ शुरू करते। दुआओं में ये दुआ सारी दुआओं से मानी व मफहूम के एतबार से बहुत अजीम है। एक तो बड़ी भी है, दुआए कुमैल से बड़ी है, दुआए अरफा मौला हुसैन की और इमाम ज़ैन अल-आबिदीन की भी दुआए अरफा है, वो दुआ और ये दुआ। यानी एक जुमला जो है ना इमाम ने फरमाया है तो वो एक जुमला नहीं है, उस पर 1 घंटा गुफ्तगू हो सकती है। दरिया को कूजे में बंद किया, यानी इल्म इमाम मैंने कहा दुआओं में नजर आता। और मैं समझता हूं कि यकीनन अगर कोई इस दुआ को माह मुबारक रमजान में ना खत्म कर ले, पूरा पढ़ ले, और जबान से नहीं दिल से इश्क से गिरिए के साथ, मैं नहीं समझता उसका कोई गुनाह बाकी रहेगा। इमाम ने इतने टेक्निक सिखाए जहन्नम की आग को बुझाने के और रहमत खुदा में जोश दिलाने के लिए। इस दुआ में एक फार्मूला नहीं है, कई सौ फार्मूला है जहन्नम से निकलने के लिए, खुदा को राजी करने के लिए। कोई एक भी आप इस्तेमाल कर लें, आपकी बख्शिश हो जाएगी। ये ऐसी दुआ है, यानी दुआओं की असलन बादशाह दुआ है, बड़ी प्यारी दुआ है। आइए शुरू करते हैं दुआए अभी हमजा सुमाली। जिस तरह दुआए कुमेल, कुमेल सहाबी थे इमाम अली के, ये सहाबी हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। दुआ मफाती में मौजूद है, बड़ी प्यारी दुआ है। आइए मिल के दिल से पढ़ते। اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سب مل کے اللهم صل على محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. اللہ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا جملہ ہی قیامت کا جملہ ہے، نجات کا جملہ ہے. اسٹارٹنگ بڑی عجیب ہے اس دعا کی. الہی یہ جب بندہ الہی کہتا ہے، یہ یعنی اللہ کے بہت زیادہ نزدیک بندہ پہنچے. الہی، اے میرے اللہ، ایک یا اللہ، ایک الہی. یعنی عربی گرام الہی جو ہے نا، اس میں عشق ہے، محبت ہے. وہ میرے اللہ، وہ میرے پیارے اللہ. اس طرح الہی لا تعذبنی بعقوبتک. او میرے اللہ، مجھے عذاب کے ذریعے سے با ادب نہ بنانا. اے میرے اللہ، مجھے عذاب کے ذریعے سے با ادب نہ بنانا. کیوں؟ دو طریقے ہیں نا کسی کو با ادب بنانے کا، ایک مار سے، ایک پیار سے. امام سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے یہ مانگا کرو، میرے اللہ مجھے با ادب بنا مگر عذاب کے ذریعے سے نہیں. اللہ اکبر. عزیز و ایک گنہگار تھا، حضرت موسیٰ نے حکم دیا، اللہ کا آرڈر ملا، اس گنہگار کو نکال دے، شہر سے نکال دی. حضرت موسیٰ کو حکم ملا، کہہ دو کوئی اس سے بات نہ کرے، سوشل بائیکاٹ، اولاد بھی بات نہ کرے. ابھی اللہ کو پتا تھا کہ یہ تبھی سدھرے گا بندہ، کسی دوسرے شہر چلا جاتا، نہیں گیا. جنگلوں میں روتا رہا، اپنی پیٹ ننگی کر کے گرم پتھر پہ رکھتا تھا، کہتا تھا میں اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، میرے اللہ میں تیرے جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کر. جنگلوں میں روتا رہتا، یہ اس کی توبہ کا ذریعہ بن گیا. کوئی کتاب نہیں، کوئی عالم نہیں، اللہ نے دل میں ڈالا. کیا کرتا تھا؟ اکثر سجدے میں رہتا تھا، اس سجدے میں بندہ اللہ کے زیادہ نزدیک. اور دعا بھی اللہ نے دل میں ڈالی. کیا دعا پڑھتا تھا؟ يا من له الدنيا والآخرة. إرهام ليس له الدنيا والآخرة. کیا ترجمہ؟ او میرے اللہ تو دنیا کا بھی مالک ہے تو آخرت کا بھی مالک ہے، اس ذلیل پہ رحم کر جس کی نہ دنیا رہی نہ آخرت. دنیا میں تو نے مجھے ذلیل کر دیا، آخرت میں میرے لیے عذاب. بس روتا تھا، یہ دعا پڑھتا، ایک ایک گناہ پہ آنسو بہا. حدیث یہ کہتی جس گناہ کو یاد کر کے تو نے صرف اتنا آنسو بہا لیا کہ مچھر کا پر بھیگ گیا، وہ گناہ کے سارے عذاب ختم ہو جائے. ایک ایک گناہ پہ روتا رہا روتا رہا. اب اس کی موت کا وقت آیا، اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا میرا ایک محبوب جنگل میں مر رہا. گناہگار محبوب خدا ہو جاتا ہے جب روتا ہے، توبہ کرتا ہے. دو فرشتوں کو حکم دیا، ایک اس کی ماں کی شکل میں جائے، ایک اس کے بابا کی شکل میں جائے. اسے ایسے گود میں لینا جیسے ماں بیٹے کو گود میں لیتی. خدا کتنا کریم. ملک الموت سے کہا ملک الموت اس کی روح بڑے آرام سے نکالنا. ماں باپ کی شکل میں فرشتے آئے، اس کو بڑا سکون ملا، آرام سے روح نکل گئی. اب حضرت موسیٰ پر وہی نازل کی، موسیٰ جی میرے مالک میرا ایک محبوب جنگل میں اکیلا مر گیا، تنہائی کی موت مر گیا، پوری امت کو لے جا، اصحاب کو لے جا، اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، کفن دینا، قبر میں لٹا دینا. حضرت موسیٰ نے اعلان کیا لوگوں ولی خدا مر گیا ہے، چلو اس کے جنازے میں. پورا شہر آیا، کیا دیکھا؟ یہ تو وہی گناہگار ہے. حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ یہ تو وہی گناہگار ہے جو تیرے حکم سے نکالا گیا. خدا کی آواز آئی، موسیٰ اسے اب گناہگار نہ کہو. اللہ گناہگار نہ کہو، یہ توبہ کر کے مرا، یہ میرا محبوب ہے. اللہ خدا خود قرآن میں کہتا اے میرے بندے جب تیرے آنکھ میں آنسو آتا ہے میری آواز آتی ہے، میں نے تجھے بخش دیا. ان اللہ یحب التوابین، تو میرا محبوب. عزیزان گرامی، مگر میں نے عرض کیا دعا کا کلچر، دعا کا فرہنگ بنانے کے لیے ہمیں اہل بیت کی ہدایات پہ عمل کرنا پڑے کہ دعا کی مجلس کیسے ہو. امام فرماتے ہیں دعا میں جب بھی رو شرما کے نہ رویا کرو. کیوں؟ اسی دعا میں فرماتے ہیں یا صریخ المستصرخین، او چیخ چیخ کے رونے والوں کی دعا جلد قبول کرنے والے. یہ فرہنگ یہ ہے، ہم لوگ شرماتے. امام کہتے ہیں نہیں، دعا میں جب بھی رو آواز سے رویا کرو، بلند آواز سے رویا، شرمایا نہ کرو، دعا جلد قبول. مولا کیوں؟ امام فرماتے ہیں خدا کو رونے والے کی آواز، ہاں جو توبہ پہ روتا ہے، امام کہتے ہیں خدا کو رونے والے کی آواز فرشتوں کی تسبیح سے زیادہ اچھی لگتی ہے. جب اللہ کو آپ کی آواز اچھی لگتی ہے تو آپ شرماتے کیوں؟ اگر رونا نہ آئے فریاد کیا کریں، رونے کی شکل بنایا کریں. کیوں؟ امام فرماتے ہیں ایک بندہ رو رہا ہے بغیر آواز کے، ایک رو رہا ہے آواز کے ساتھ. فرمایا ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہے. لوگوں نے کہا مولا وہ کیوں؟ فرمایا خدا جب کوئی بلند آواز سے روتا ہے خدا تیرے رونے کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے. ان فرشتوں کا دل بڑا نرم ہے, یہ رو کے کہتے میرے اللہ دنیا سو رہی ہے, یہ آدھی رات کو بیچارے رو رہے. یہ سارے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ بھی روتے ہیں جن کی تعداد کا علم صرف خدا کو. اب آپ اکیلے نہیں, اگر خاموش روئے آپ اکیلے. خدا وہ ہے جو قطرے کو سمندر بنانا چاہتا ہے, تیرے ایک آنسو کو دریا بنانا چاہتا ہے, پھر خدا تیرے رونے کی آواز دوسرے آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے. ان کا بھی دل نرم ہے, کہتے میرے اللہ یہ بیچارے رو رہے ہیں, تجھے حسین کا واسطہ دے رہے ہیں, ان کے گناہ بخش دے. اب آپ اکیلے نہیں ہیں, کروڑ اربہ فرشتے آپ کے ساتھ. دعا اس طرح سے جلد قبول ہوتی ہے کہ وہ فرہنگ وہ ماحول بنے تاکہ خدا کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں. امام فرماتے ہیں پھر تیری دعا تیسرے چوتھے ساتویں آسمان تک خدا پہنچاتا ہے. اب ساتوں آسمان کے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. کیوں؟ بلند آواز سے رو رہے ہیں. کیا بس خدا کا اتنا کرم ہے؟ نہیں. اب وہ غور سنیں, غور سے سنیں اس مجلس میں جن کی ماں کا انتقال ہو گیا, جن کے والد کا انتقال ہو گیا. امام فرماتے ہیں پھر تیرے رونے کی آواز تیری مرحوم ماں کو سناتا ہے. او ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, ماں برزخ میں فریاد کرتی ہے میرے اللہ آدھی رات ہے میری بیٹی رو رہی. اللہ او میرے اللہ, میرا بیٹا آدھی رات کو رو رہا ہے, تو اس کے گناہ بخش دے. اور حدیث میں والدین کی دعا قبر سے برزخ سے بھی خدا رد نہیں کرتا. یہ آداب ہے عزیزان گرام. اسی طرح سے مجلس حسین کے آداب بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں سکھائے ہیں وہ یہی ہے کہ بلند آواز سے رویا کرو. مجلس ہو رہی ہے, ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے, بہت گریا ہوا, مجلس ختم ہو گئی, صحابی امام کے پاس آیا خدا حافظ کہنے کے, امام نے شکایت کی. امام نے فرمایا میرے صحابی تو نے میرے دادا مظلوم حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا. صحابی گھبرا گیا, جیب سے رومال نکالی, کہا مولا یہ میرے آنسوؤں سے بھیگ چکی ہے, میں رو رہا تھا. امام نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا تو رو رہا تھا مگر تو نے میرا جملہ نہیں سمجھا. میں نے کہا تو نے میرے مظلوم دادا حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا. صحابی نے کہا مولا کیسے روؤں کہ حق ادا ہو جائے. امام نے فرمایا جیسے بوڑھی ماں او جوان بیٹے کی لاش پہ وہ بین کر کے روتی ہے, ویسے بین کیا کرو. سب مل کے گئے مظلوم حسین, او مظلوم حسین. سبحان اللہ, اللہ اکبر. فارسی کا شعر ہے, بڑا پیارا شعر, کہتا ہے چشم گریان چشم فیض خدا وس, رونے والی آنکھ اللہ کے فیض کا چشمہ ہے. یہ آنسو نہیں یہ موتی ہیں, قیامت کے دن فرشتے نمازوں کا وزن کریں گے, روزوں کا وزن کر لیں گے, حج کا بھی کر لیں گے, مگر یہ جو آنسو بہے ہیں فرشتے کہیں گے خدا ہم ان کا وزن نہیں کریں گے. واقعی سب سے قیمتی ذخیرہ یہ آنسو ہیں, قبر کا سرمایہ یہ آنسو ہے. خدا کہے گا فرشتو تم ان آنسوؤں کا اجر نہیں دے سکتے, ان آنسوؤں کا اجر میں خدا خود عطا کروں. اور وہ آنسو جو حسین کے غم میں بہتے ہیں اس کا اجر فاطمہ زہرا سے ملے. اب دعا پڑھنے کا مزہ آئے گا جب آنکھ میں آنسو اور دعا قبول ہوتی ہے. اب یہی جملہ کہیں تو بات کچھ اور ہے. الہی لا تعذبنی بعقوبتی, مجھے عذاب کے ذریعے سے با ادب نہ کرنا, مجھے اپنی محبت سے با ادب بنا دے, مجھے حسین کا عشق دے, مجھے عباس علمدار کا عشق دے, مجھے امام زمانہ کے عشق سے با ادب بنا دے میرے اللہ. او میرے اللہ مجھے اہل بیت کا عشق دے, مجھے پیارے پاک نبی کا عشق دے, تاکہ یہ عشق مجھے گناہوں سے روک دے. وَلَا تَمْكُرْ بِي فِيهِ لَتِكْ مِنْ أَيْنَ لِيَ الْخَيْرُ يَا رَبْ ولا يوجد الا من عندك. اے خدا خیر اگر تیرے در سے نہ ملے گا پھر کہاں سے ملے گا. من اين لي النجاة ولا تستطاع الا بك. اگر نجات تیرے در سے نہ ملے گی پھر مجھے کہاں سے ملے گی. اے عزیزو ذرا سوچئے, آدھی رات کا وقت ہے, اگر دوست کے دروازے پہ چلے جائیں وہ ناراض ہو جائے گا, کس وقت آئے ہو یہ آنے کا وقت ہے. مگر خدا کتنا کریم ہے, خدا کتنا رحیم ہے, جس وقت بھی جاؤ وہ کہتا لبے لبے, جی میرے بندے جی میرے. للذی احسن استغنا ان عونک برحمتک, للذی اساء واجترا علیک لم یرزک خرج عن قدرتک. اب سب مل کے کہیں مگر کس طرح سے, دعائے کمیل سے الگ ہے یہ. دعائے کمیل میں مولا علی کہتے ہیں تین مرتبہ کہو یا رب یا رب یا رب, مگر یہاں امام فرماتے نہیں, ایک سانس میں جتنی مرتبہ کہہ سکتے ہو کہتے جاؤ یہاں تک کہ سانس ٹوٹ جائے. یہ امام سکرات کی تیاری سکھا رہے ہیں, ہو جب تیری سانسیں ٹوٹ جائیں گی اس وقت تمہاری زبان پہ یہی نام ہو. اب ایک سانس میں ٹرائی کریں سب مل کے, یا رب 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 یا رب. تصور کریں تصور, تصور کریں سکرات ہے, روح نکل رہی ہے سب سے جدا کہہ رہے ہیں, تصور کریں سکرات کا وقت ہے, روح پرواز ہو رہی ہے, ہاں یا رب 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 یا رب. پہلی سخت ترین منزل انسان کے لیے سکرات کی منزل ہے, اس کی تیاری امام زین العابدین سکھلا رہے ہیں, ایک سانس میں جتنی مرتبہ کہہ سکتے ہو یا رب 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 یا رب. یا رب الحسین, اے خدا سکرات کے وقت اگر مولا حسین میری مدد کے لیے نہ آئے میں برباد ہو جاؤں گا. سکرات کوئی معمولی سفر نہیں, پورا بدن جو یقیمہ قیمہ ہو رہا ہے, کیسے گزرے گا؟ صرف مولا حسین کی مدد سے یہ سفر آسان ہو جائے گا. سب مل کے کہ یا رب الحسین, اے حسین کے رب اغفر ذنوبی, بخش دے آج ہمارے سارے گناہ, بحق حسین. سب مل کے اغفر ذنوبی بحق حسین. آدھی رات کے وقت خدا کہتا ہے سب سے بڑا گناہگار بھی آ جائے میں اس کی دعا بھی رد نہیں کرتا. اب حسین کا واسطہ دے رہے ہیں, ایک اور واسطہ دیں. سب مل کے یا رب زینب, یہ خدا راستہ کبھی رد نہیں کرے گا, زینب ام المصائب ہے, سب سے مظلوم ہے. سب مل کے گئے یا رب زینب اغفر ذنوبی بحق زینب سلام اللہ علیہا. اے عزیزو سب سے سخت ترین منزل بی بی زینب اور سجاد کے لیے کون سی تھی؟ او جب بی بی زینب ہزاروں بدماشوں کے مجمع میں ہو بازار کوفہ, او بازار گوبا میں آ گئی, سجاد کا جگر کہاں پھٹا گیا, کہاں خون کے آنسو. عزیزو یہ روایت ہمارے اردو زبان کے علماء ذاکرین کم پڑھتے ہیں, بڑی سخت روایت, بڑا ظلم ہوا سادات. جب کوفے میں سادات آئے کچھ یہودی شمر ابن سعد کے پاس آئے, جتنا پیسہ لے لے علی کی بیٹیوں کو یہودیوں کے محلے سے گزار دے. سب سے سخت ترین مند, ये बेगैरत लोग थे, पैसे की वजह से सब काम करते। शिमर इब्ने साद ने पैसे लिए, अब सादात का काफिला यहूदियों के मोहल्ले से गुजरने लगा। ये यहूदी दौड़ते हुए गए, ऐलान किया, ऐ यहूदियों, जिनके बाप दादा को अली ने कत्ल किया है, अगर इंतकाम लेना है हम अली की बेटियां तुम्हारे मोहल्ले में ले आए। अजीजों, यहूदी औरतें छतों पे चढ़ गई, वो झोलियां पत्थरों से भर लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक यहूदी औरत ने उस खोली मलून से कहा जो मौला हुसैन का सर लेके जा रहा था, गर्दन से सोने का हार उतार के फेंका, ये तेरा इनाम है, हुसैन का सर मेरे नजदीक ले आ, ओ मैं बदला लेना चाहती ये नजदीक लेकर आया। ये मलूना कहने लगी, और नजदीक लेकर आ ताकि मेरा निशान खता न हो। ओ आजादारो, एक मर्तबा इसने बड़ा पत्थर उठाया, ओ ज़ैनब की नजर पड़ी सज्जाद, ये औरत क्या करना चाहती है। सज्जाद रोने लगे, एक मर्तबा सकीने की नजर पड़ी, ओ मेरे अल्लाह मेरे बाबा की खैरो, एक मर्तबा इस जालिम औरत का हाथ उठा, फिर हाथ नीचे आया, हुसैन के सर से खून जारी हुआ, और सब बीबियों ने फरियाद की या हुसैन। हाय मजलूम हुसैन, सब मिलके गए या हुसैन, हाय मजलूम हुसैन। अजादारो, जुल्म यहां खत्म न हुआ। दूसरी औरत उठी, इस औरत को कहा, तूने बहुत अच्छा किया, तूने भाई को मारा है, अब मैं बहन को मारूंगी। उस दूसरी औरत ने दूसरा पत्थर उठाया ज़ैनब को मारने के लिए, और ज़ैनब ऐसे देख रही थी, गोया खामोशी से कह रही थी, मारो मारो, जब हुसैन को मारा है अब ज़ैनब को भी मारो। ओ मारो मारो, अगर हुसैन को मारा है तो ज़ैनब को भी मारो। एक मर्तबा ज़ालिमा का हाथ बुलंद हुआ, फिर हाथ झुका, ज़ैनब के सर से खून जारी हो। ओ मेरे अल्लाह, इससे बड़े वास्ते हमारे पास कोई नहीं, हाथों को सरों से बुलंद करें। दस मर्तबा या गफ्फारो, या गफ्फारो, या गफ्फारो, या गफ्फारो, या गफ्फारो, या गफ्फारो, या गफ्फारो,
Ya Ghaffar, Ya Ghaffar. O mere Allah, mere gunah na dekhna, is majme ke gunah na dekhna. Tujhe Zainab ke zakhmi sar ka waasta. O mere Allah, tujhe Hussain ke zakhmi sar ka waasta. O khuda, hamare sare gunah bakhsh de, bakhsh de. ہمارے والدین کے گناہ بخش دے, جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ان کے گناہ بخش دے, جن کا حق ہماری گردن پہ ان کے گناہ بخش دے. میرے اللہ, تب تک موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لیں. جو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس قضا ہے وہ ادا کر دیں. بندوں کا کوئی حق ہے, کسی کا قرض ہے, وہ واپس کر دیں. میرے اللہ, جو بری عادتیں ہمارے اندر ہیں آج کی رات ساری ختم کر دے. جتنی نورانی صفات ہیں وہ ہمیں نصیب کر دے. او میرے اللہ, اپنی معرفت محبت کا نور دے, اہل بیت کی معرفت محبت کا نور دے. میرے اللہ, ہمیں علم کامل دے, میرے اللہ ہمیں عقل کامل دے, میرے اللہ ہمیں تقوی کامل دے, میرے اللہ ہمیں ایمان کامل دے, میرے اللہ ہمیں عبادتوں دعاؤں کی لذتیں کامل دے, میرے اللہ ہمیں صحت کامل دے, میرے اللہ اپنے حضور کا نور ہمیں کامل دے. ایک لمحے کے لیے تجھ سے غافل نہ رہیں, ایک لمحے کے لیے امام زمانہ سے غافل نہ رہیں. کوئی گناہ ایسا نہ کریں جس سے امام کا جگر خون ہو جائے, امام ہم سے ناراض ہو جائے. اے خدا, امام کو ہم سے راضی و شاد فرما. اے خدا, ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. مریضوں کو شفا عنایت فرما. میرے اللہ, بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما. بے اولاد کو اولاد عطا فرما. جنہیں اولاد دی ان کی اولاد کو صالح فرما. اے میرے اللہ, یہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں, دنیا میں ٹیررزم پھیلا رہے ہیں, ان سارے ٹیررزم پھیلانے والوں کو, ان کی مدد کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. مقدس مقامات, خصوصاً روزہ حضرت زینب, روزہ حضرت سکینہ, شہداء کربلا کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ, پوری دنیا سے ظالمین, فاسقین, منافقین کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ و امام زمانہ کا ظہور فرما. اے میرے اللہ, ہمیں مولا کی زیارت نصیب فرما. میرے اللہ, جو مانگا گیا عطا فرما, جو بھول گئے ہیں محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما. عاشقان حج و زیارت کو زیارتیں نصیب فرما. میرے اللہ, دنیا میں اگر ایک حاجت پوری کرتا ہے, قبر برزخ قیامت میں زیادہ محتاج ہے, وہاں بے شمار حاجتیں پوری فرما. سارے مرحومین کے لیے, اپنے اپنے مرحومین شہداء اسلام, قائد شہید سبط جعفر ڈاکٹر محمد علی, ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم تھے ڈاکٹر شاہد بیچارے, وہ بھی شہید ہو گئے, سارے شہداء, دلاور بھائی, جتنے شہداء ہیں ان کے لیے انشاءاللہ صحت کے لیے, ایک مومنہ ہے, مومن ہے لیڈیز, ایک ملک کچھ خواتین نے التماس سے دعا کی, بہت سارے مریضوں نے کہا ہے. اما یجیب کا پڑھ لیں انشاءاللہ ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه يكشف السوء. هم يجيب البشر وإذا يكشف.
پروردگار سارے مریضوں کو شفا عطا فرما. ہمارے شوہر بہت سارے دوست جو اس وقت نہیں ہیں, مولوی علی محمد صاحب ہمارے بہت اچھے دوست تھے, یہیں بڑی خدمت کی ہیں, محمود بھائی حج کا قافلہ لے جاتے تھے, جو بھی دوست دنیا سے گزر گئے سب کو یاد کریں, یہ رات مرحوموں کو یاد کرنے کی رات. ایک سورہ فاتحہ سب کے. بسم اللہ الحمدللہ الرحمن الرحیم اياك نعبد واياك نستعين انا من شاء الله يا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. وقت ہے کافی, تو نماز تہجد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, دو دو رکعت کر کے آٹھ رکعت ہے. فجر کی طرح نماز تہجد پڑھتا ہوں اور دو رکعت نماز شفا اور ایک رکعت نماز وتر ہے, اس میں الحمد تین مرتبہ قل و اللہ. اگر یاد ہے تو قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھیں, یاد نہیں تو تین قل پڑھ کے, اور دعائے قنوت میں 20 زندہ 20 مرحومین کے لیے دعا. فارسی میں, اردو میں, انگریزی میں بھی کہہ سکتے ہیں, عربی میں ہے تو اللہم اغفر, کیسے میرے اللہ میرے ابا کو بخش دے, میرے ماں کو بخش دے, نام لے کے جتنے بھی یاد ہوں 20, اور پھر اگر ٹائم ہے تو استغفر اللہ 70 مرتبہ یا الہی الف بھی 100-200 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں. اور سورہ فاتحہ کی درخواست ہے شمس الحسن والشرف الحسن میں لیلا بی بی نے تمسن وحید الحسن, ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله اكبر الله الصمد الذي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. کیونکہ سحری کا وقت قریب ہے لہذا انشاءاللہ سحری کے لیے زیارت
پڑھا دیجیے. مومنین سحری کا بریک لے لیتے ہیں, سحری کرتے ہیں انشاءاللہ, اور مولانا جان علی شاہ کاظمی صاحب نماز فجر پڑھائیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ محفل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ.
سلام علیکم یا ابا عبداللہ, سلام علیکم ابن رسول اللہ, سلام علیکم ابن امیر المومنین, السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا, سلام علیکم ابن خدیجۃ الکبریٰ, سلام علیکم ابن ابو طالب, سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین خصوصا سیدی و مولایا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیک یا غریب الغرباء, سلام علیک یا معین الضعفاء, سلام علیک یا شمس الشموس ونیس النفوس, ایها المدفون بارض طوس, السلطان بلطن ایها الرضا, الراضی بالقدر والقضاء, کن شفیونا وشفی والدین فی یوم الجزا, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیک یا امام الانس والجان, السلام علیک یا شریک القرآن, السلام علیک یا امام الزمان, نحظ عجل اللہ تعالی فرجک جعلنا من انصارك وعوانك. السلام عليكم يا اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته. لا صلي على